जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, गोपी जन बल्लभ वरधारी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे आप जानते हो आनंद बोध शुक्रिया क्या है,
नित्यानंद,
तो आज आप श्लोक सुनोगे। शुक्रिया ये स्थापित किया जाता है परमानंद स्वयं श्री श्री कृष्ण
श्री कृष्ण
दिवे श्री चैतन्य
श्री चैतन्य
चंद्र
चंद्र
शैवान
शैवान
संगे
श्रीनंद
श्री कृष्णमदीप श्री चैतन्य चंद्र
श्री कृष्ण
हरे कृष्ण नवदीपे
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare
प्रकट होते हैं, उनके सनातन साथी भी साथ में प्रकट होते हैं। भगवान नित्यानंद कौन है? इस श्लोक के अनुसार बलराम है, और भगवान नित्यानंद प्रकट हुए लक्ष्मण के रूप में जब भगवान राम प्रकट हुए थे पृथ्वी पर, तो वही नित्यानंद बलराम है, लक्ष्मण है। नित्यानंद जी को नित्यानंद बलराम भी कहा जाता है। इस अध्याय में नित्यानंद बलराम की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। कभी कभी भगवान नित्यानंद छोटे भाई के रूप में प्रकट होते हैं, तो कभी बड़े भाई के रूप में, जैसे कि भगवान राम प्रकट हुए तो प्रकट हुए थे छोटे भाई के रूप में, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे बड़े भाई के रूप में, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए कि फिर से बड़े भाई के रूप में। प्रभुपाद जी ने कहा कि बलराम के द्वारा हमें दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हम कृष्ण भगवान की सेवा कर सकते हैं। बलराम बल आध्यात्मिक बल, तो इसी प्रकार नित्यानंद भगवान के द्वारा हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु को समझना चाहें, हमें नित्यानंद जी के द्वारा महाप्रभु के पास पहुँचना चाहिए, और फिर हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। बलराम के द्वारा ओरिजिनल गुरु भी माना जाता है, तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, आप भगवान नित्यानंद सदा प्रसन्न हो, मैं जो हूँ अत्यंत दुखी। तो हम सब अत्यंत दुखी हैं, अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें भगवान नित्यानंद की शरण स्वीकार करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि नित्य का अर्थ है सनातन, आनंद का अर्थ है आनंद। जो व्यक्ति भगवान नित्यानंद के शरणागत हो वो आनंद ही आनंद अनुभव करेगा, और जो व्यक्ति नित्यानंद की शरण नहीं ले वो सदा दुखी रहेगा। तो भगवान नित्यानंद प्रकट हुए थे एक चक्र में, आयु की दृष्टि से लगभग 20 साल बड़े थे महाप्रभु, 12 साल बड़े थे महाप्रभु से, और वो प्रकट हुए थे कहाँ कौन से स्थान में, एक चक्र में, माघ महीने के 13वां दिन को। उनके पिता का नाम था हाय पंडित और माता का नाम था पद्मावती। पद्मावती और हाय पंडित के एक ही संतान थी, एक ही पुत्र था जिसको बुलाया जाता था पिताई। बचपन में जब पैदा हुए थे उन्हें पिताई नाम से सब बुलाते थे। पिताई जब छोटा था अपने भक्तों को ले, अपने साथियों को लेकर राम लीला और कृष्ण लीला का भाव प्रकट कर रहा था। निताई अपने भक्तों के साथ मिलकर, मित्रों के साथ मिलकर कृष्ण लीला करते थे, जैसे बच्चे खेलते हैं वो खेलते थे कैसे कृष्ण लीला। जो जो घटनाएं बीती थी भगवान कृष्ण के जीवन थे, उन घटनाओं की लीला करते थे। पुतना अगस्तुरा भगवान की गोवर्धन लीला, कैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और ब्रिजवासियों की सुरक्षा की, पुतला कैसे किनार कैसी आई थी भगवान का बात करने के लिए। भगवान ने उनके स्तन द्वारा दूध दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो वो बकायदा कृष्ण लीला करते थे अपने साथियों के साथ। कृष्ण लीला ही नहीं, राम लीला भी। हनुमान जी ने किस भाव से सेवा की भगवान राम। उनके माता पिता जो थे हराई पन्ने और पद्मावती, वो हैरान हो गए थे। पड़ोसी थे वो भी हैरान हो गए थे। माता पिता कहते थे हमने तो इसे कृष्ण लीला का कोई उपदेश दिया ही नहीं, कैसे देवता नेता ने नाटक किया, कैसे देवता ने जाकर भगवान से प्रार्थना की प्रकट होनी चाहिए। पढ़ाई पंडित और पद्मावती ने कहा हमने तो ये शिक्षा दी नहीं उसे, तो इसे ज्ञान कहाँ से मिला। कई बार लोग पूछते थे पड़ोसी और माता पिता बेटा तुम ये सब नाटक करते हो, हमने तो कभी तुम्हें सिखाया ही नहीं, तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। नेता कहते थे मेरी लीलाएं हैं, तुम्हें इन सबको अच्छी तरह जानता हूँ। दूसरे शब्दों में वो साबित कर रहे थे वो पहले प्रकट हो चुके हैं किस रूप में, बालराम के रूप में और लक्ष्मण के रूप में। तो पहले 12 साल निताई के बीत गए इस दिव्य लीला को प्रकट करने में। वो जो प्रकट कर रहे थे अपने साथियों के साथ कृष्ण लीला और राम लीला। एक सन्यासी महात्मा, कई कहते उनका नाम था लक्ष्मीपति तीर्थ, पर कई ग्रंथों में कोई दूसरा नाम है। एक सन्यासी महात्मा हराई पंडित के घर में आए। हराई पंडित ने उनका बड़ा स्वागत किया। जैसे पापा जी कहते हैं कि उनके पिता गौर मोहनडे बकायदा संतों को निमंत्रण देते थे, सेवा कर देते। पढ़ाई पन्ने ने बकायदा संतों को निमंत्रण देते थे, उनकी सेवा कर देते। पढ़ाई पन्ने ने इस सन्यासी की बहुत सेवा की और इस सन्यासी से पूछा मैं तुम्हारी क्या सेवा और कर सकता हूँ, हुक्म दीजिए क्या सेवा मैं आपके लिए कर सकता हूँ। सन्यासी ने कहा दरवाजा बंद कर सकते हो, अच्छा ठीक है थोड़ा बंद करो। तो हराई ने कहा, तो हराई बंदे ने सन्यासी ने कहा मैं क्या सेवा आपके लिए कर सकता हूँ, मांगो जो मैं से मांगना चाहते हो। तो सन्यासी ने कहा मैं अकेला यात्रा कर रहा हूँ, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे एक सहयोगी की आवश्यकता है, और अगर आपका बेटा आप मुझे दे दो तो मेरी यात्रा में सुविधा होगी। जब हाई पंडित ने सुना ये सन्यासी कि बेटा को मांग रहा है, एक प्रकार से उनका हार्ट अटैक हो गया। जैसे भगवान राम महाराज दशरथ को बड़ा बड़े प्रिय थे, निमाय नेता है बहुत ही प्रिय था उसके माता पिता को, एक ही बेटा था। पर हराई ने वचन दे दिया था इस सन्यासी को, खुद कह दिया था पहले कि आप मेरे से मांगो जो मांगना है आपकी सेवा करूंगा। तो हराई को आईने अपने बेटे को दे दिया इस सन्यासी को, और सन्यासी चल पड़े अपने भाई के साथ। हाँ, ये पंडित अत्यंत शोक में थे, दिन रात सोच रहे थे मेरा बेटा चले गया, निताई चले गया, अब मैं कैसे जीऊंगा, खाते समय सोते समय। और माता भी अत्यंत दुखी थी, पर उन्होंने अपने वचन का पालन किया। आजकल तो आप कुछ रिटन एग्रीमेंट भी करो कोई पालन नहीं कर रहा, अच्छे समय में एक बार वचन दिया उसका पालन होता था। तो थोड़ी देर बाद शोक के कारण, हराई कारण हमने शरीर को त्याग दिया और पद्मावती देवी। तो निताय सन्यासी के कारण निकले, पहले तो इन्होंने सन्यासी के साथ यात्रा की, जिसके पश्चात 12 साल के लिए निताई ने भारत के तीर्थ के स्थानों की यात्रा की। और इस विषय में तुलना की जाती है बालराम जी की यात्रा के साथ, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, बालराम जी की इच्छा नहीं थी कि युद्ध हो, और बालराम ने भी प्रयास किया था कि युद्ध ना हो, पर जब उन्होंने देखा कोई उपाय नहीं है, बालराम ने क्या किया, तीर्थ के स्थानों की यात्रा की। उसी प्रकार निताई ने अगले 12 सालों के लिए तीर्थ की यात्रा, तीर्थ के स्थानों की यात्रा की। जब वो वृंदावन में आए तो और प्रसन्न हो गए, वृंदावन आए भगवान की कृष्ण लीला उन्हें याद में आने लगी। इस प्रकार निताई ने बचपन में कृष्ण लीला रामलीला पकड़ की, उसके पश्चात वो घर से गए इस सन्यासी के साथ, उस सन्यासी के साथ यात्रा की तीर्थ के स्थानों की, जिसके पश्चात वृंदावन में गए। महाप्रभु भी प्रकट हो चुके थे भौतिक दृष्टि से, महाप्रभु की आयु 12 साल कम थी निताई की आयु। महाप्रभु जब प्रकट हुए उन्होंने देवी लीला प्रकट की नवदेव में, पर उन्होंने अपना प्रचार का आंदोलन शुरू नहीं किया था। महाप्रभु निताई को पता लग गया कि महाप्रभु नवदेव में है, वो आए नवदेव में और रुके नंदनाचार्य के घर में। नंदनाचार्य का घर हमारे इस्कॉन मायापुर मंदिर के निकट में ही है, और अक्सर नवदेव परिक्रम शुरू होती है अक्सर ये पहला स्टॉप होता है, होता था, आजकल से नहीं होता। और नंदनाचार्य के घर में एक बहुत सुंदर बगीचा भी था, उसका नाम था ईशोदिया, जहाँ की पूरे वृंदावन की लीला प्रस्तुत हुई थी। महाप्रभु को पता था आखिर महाप्रभु अंतर्यामी है, कि अभी नित्य नितिन निताय या नित्यानंद नवदेव आ गए हैं। तो उन्होंने अपने दो भक्तों को भेजा, हरिदास और श्रीवास को। हरिदास हैं ब्रह्मा जी के अवतार, श्रीवास हैं नारद मुनि के अवतार। उन्होंने कहा कि नवदेव में एक महान संत आया है नित्यानंद नाम का, तो नित्यानंद तो निवास कर रहे थे नंदाचार्य के घर में, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। तो निताई हरिदास और श्रीवास घर घर गए देते धंधा को ढूंढने के लिए, कहां भी वो नहीं मिले, धंधा चाहिए हमें कर रहा है। उन्होंने लौट कर कहा मारो मुझे, हम गए थे ढूंढने के लिए घर घर, हमें कोई सन्यास देते नंद नाम का सन्यासी मिला ही नहीं। तो हरिदास और श्रीवास वापस लौट गए। भगवान की इच्छा थी कि जो पहला मिलन होगा नित्यानंद महाप्रभु का बड़े प्रेम के साथ हो। हालांकि हरिदास और श्रीवास जो नारद के और ब्रह्मा के अवतार हैं और नारद मुनि के अवतार, वो नहीं ढूंढ पाए कहाँ है नित्यानंद। महाप्रभु ने अपने भक्तों को लेकर गए, महाप्रभु तुरंत उसी स्थान पर पहुंचे जहाँ की नित्यानंद जी थे और बड़े प्रेम के साथ मिले। पहला मिलन जो हुआ इसकी वर्णन बड़े अच्छी तरह शास्त्रों में है। महाप्रभु की इच्छा थी कि पहला मिलन दोनों का हो, दोनों मिले बड़े प्रेम के साथ। भगवान नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के साथ है। भगवान नित्यानंद ने नाम हाथ खोला जहाँ से नाम का प्रचार किया, और जो चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे उन्होंने ये सूचना स्कूल के बच्चे आ गए हमें क्या करोगे। अच्छा ठीक है ओके। भगवान नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने गए जा रहे थे ये सूचना के वो चुने भक्तों को दी थी जिसमें एक थे नित्यानंद। संन्यास उन्होंने लिया था कहाँ, कटवार में। संन्यास लेकर महाप्रभु जा रहे थे कहाँ, उद्देश्य था जगन्नाथपुरी मंदिर जाना, जगन्नाथ जी के दर्शन के। और महाप्रभु बरंगी नदी में स्नान करने जा रहे थे गए, और उन्होंने अपना संन्यास दंड नित्यानंद के हाथ में छोड़ा, सुरक्षा करो। पहले बरंगी नदी में गए तैरने, फिर शिव जी के मंदिर में गए दर्शन के। जब से नित्यानंद के पास वो डंडा आया उन्होंने वो डंडे को तीन टुकड़ों में तोड़ दिया और बरंगी नदी में फेंक दिया, नंदा बरंगी नदी में फेंक दिया। जब महाप्रभु को पता लगा डंडा को तीन टुकड़ों में तोड़ कर फेंक दिया है, बाहर से तो उन्होंने व्यवहार किया जिसमें बड़े क्रोधित है, क्यों मेरे डंडे को तोड़कर फेंक दिया, मैं तो दया सन्यासी हूँ। प्रिंस लीला के पीछे तीन कारण है। एक कारण ये था कि पहले ठीक था, एक कारण ये था कि नित्यानंद को पता था चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण आय, राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो नित्यानंद का भाव था ये भगवान है, इन्हीं नियमों के पालन की क्या आवश्यकता, साधारण व्यक्ति को संन्यास झंडा उठाने की आवश्यकता है, तो भगवान है इन्हें कोई डंडे की उठाने की आवश्यकता नहीं, तो तोड़ दिया। दूसरा कारण ये था कि महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था मायावादी सन्यासी से। मायावादी सन्यासी जब संन्यास देते हैं तो एक डंडा देते हैं, और जो सन्यासी वैष्णव सन्यासी है उसी डंडा रखते हैं, देखता है एक ही डंडा है बस वो तीन डंडे हैं, तीन डंडे को बांधा जाता है कपड़े में, तीन डंडों का क्या भाव। ये सन्यासी का वश है मन पर बुद्धि पर और इंद्रियों पर। सन्यास का अर्थ है सिविल डेथ, भौतिक कार्यों से मुक्त। तो सन्यास धरना का मतलब है इस व्यक्ति का पूरा वश है मन बुद्धि इंद्रियों पर। महाप्रभु के पास था एक डंडा जो कि उन्होंने ग्रहण किया था एक मायावती सन्यासी। नित्यानंदा ने सोचा एक डंडा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो ठीक वैष्णव सन्यासी है। तीसरा भाव ये था कि महाप्रभु की हार्दिक इच्छा थी कि जब वो जाए जगन्नाथ जी के पास अकेले जाए। आखिर महाप्रभु प्रकट हुए थे राधा भाव में और महाप्रभु की इच्छा थी कि वो अकेले जाए दूसरों के साथ नहीं। तो इसलिए महाप्रभु ने क्रोध प्रकट किया जब उन्हें सूचना मिली कि डंडा उनका तोड़ दिया है। वो गुस्से में आगे बढ़े तेजी के साथ और जब वो जगन्नाथ मंदिर पहुंचे वहां जगह 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 कहते कहते बेहोश हो गए, बिल्कुल लेटे थे द्वार के सामने, द्वार के बीच में। तो पुजारी को द्वार बंद करना था भोग लगाने के लिए, पुजारी संकट में था क्या किया जाए, ये बड़ा खूबसूरत सन्यासी यहाँ लेटा हुआ है क्या किया जाए। सर्वभौम भट्टाचार्य जो कि उच्च कोटि के मायावादी थे उन्होंने अनेक उन्होंने कहा कि इसे उठाकर मेरे घर में ले जाओ। फिर जब जब नित्यानंद भगवान पहुंचे वहाँ जगन्नाथ मंदिर में अपने साथियों के साथ उन्होंने सुना चर्चा हो रही थी, एक बहुत खूबसूरत सन्यासी आया था जैसे जगन्नाथ जी के दर्शन लेते ही बेहोश हो गया, उसे उठा कर ले गए हैं कहाँ सर्वभौम भट्टाचार्य। तो नित्यानंद समझ गए खूबसूरत सन्यासी कौन है। सर्वभौम भट्टाचार्य ने जब महाप्रभु को देखा वो समझ गए थे दिव्य प्रेम के कारण ये बेहोश हुआ है, पर उन्हें पता नहीं था उन्हें होश में कैसे लाना चाहिए। नित्यानंद जी जब पहुंचे उन्हें पता था क्या है उपाय, हरि नाम किया महाप्रभु। महाप्रभु जी के पास सर्वभौमाचार्य जो कि ऊंचा कोटि का मायावादी था उसे कोटि का वैष्णव बन गया। भगवान नित्यानंद की अनेक लीलाएं हैं और महाप्रभु ने एक दिन नित्यानंद हरिदास ठाकुर को बुलाया, कहा नित्यानंद हरिदास घर घर जाओ और एक संदेश दो, क्या बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो, कृष्ण के शिक्षक को अपनाओ। कृष्ण ही तुम्हारे माता हैं, कृष्ण ही तुम्हारे पिता हैं, कृष्ण ही तुम्हारे सुख का कारण है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये आदेश दिया नित्यानंद हरिदास को, नित्यानंद हरिदास ने तुरंत स्वीकार कर लिया महाप्रभु के आदेश के अनुसार, प्रचार शुरू कर दिया। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे भगवान नित्यानंद को बंगाल में छोड़ गए थे, महाप्रभु ने नित्यानंद को कहा तो बंगाल में प्रचार करो ये महाप्रभु लौटे तो प्रसन्न हुए थे कि मार्टिन जिन्होंने खुदा में प्रचार किया है। नित्यानंद और हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार घर घर उन्होंने प्रचार आनंद किया। कई घरों में उनका अच्छा स्वागत हुआ, कई जगहों में कई स्थानों में साथ हुआ। नित्यानंद हरिदास ये खोज रहे थे कौन है इस शहर के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। अगर हम उनका उद्धार करें, अगर हरि नाम को जोड़ दें उनके साथ, फिर महाप्रभु की महिमा तेजी से बढ़ेगी। अगर पुण्य पवित्र भाव के लोग जुड़े इसमें ज्यादा चमत्कार नहीं है। लोग कहेंगे वो तो ब्राह्मण थे, उनको भक्त बनाया क्या, इसमें यार चमत्कार क्या। तो अगर हम कोई पतितों का उद्धार करेंगे फिर लोग कहेंगे हाँ महाप्रभु के संदेश में शक्ति है। क्योंकि जब महाप्रभु ने अपना प्रचार आरंभ किया, ये नहीं कि सब ने उनका साथ दिया, कईयों ने साथ दिया, कहा हाँ बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। मुसलमानों ने विरोध किया, मुसलमानों ने कहा अगर आपने माए के आंदोलन को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, रोकना चाहिए। उनमें एक मुसलमान था, दिन रात काजी को जाकर शिकायत करता था, महाप्रभु के आंदोलन को रोको नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो काजी ने कहा तुम दिन रात आकर शिकायत करते हो महाप्रभु के आंदोलन की, तो जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ दफ्तर में भी तुम्हारे कृष्ण मंत्र कर जाते क्या। उसका उस व्यक्ति ने कहा ये बात सच है, जब से मैंने ये हरि नाम सुना है महाप्रभु के द्वारा मेरे जीव से ये हरि नाम निकलता ही नहीं है। कई हिंदुओं ने भी विरोध किया, कई हिंदुओं ने कहा ये निमाय तो हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहा है। विस्मार्त ब्राह्मण थे, उनकी आमदन घट गई, क्यों हरि नाम के लिए कोई ब्राह्मणों की आवश्यकता या की आवश्यकता नहीं। तो वो भी विरोध करके काजी के पास जा रहे थे, ये माय के आंदोलन को रोको, ये तो हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। तो ये नहीं कि केवल मुसलमान विरोध कर रहे थे, हिंदू का भी विरोध कर रहे थे। तो माई हरिदास नित्यानंद महाप्रभु के आदेश के अनुसार घर घर प्रचार आरम्भ किया। उन्हें सूचना मिली कि दो भाई का जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में और बिगड़ चुके हैं, सदा शराब के नशे में रहते हैं और कोई ऐसा अपराध नहीं है जो उन्होंने नहीं किया। अगर उनका उद्धार हो जाए तो बड़ा बेहतर होगा। जय विजय प्रकट हुए थे हिरानंद शाह हिरानंद काशिपु में, फिर रावण कुंभकर्ण, फिर शिशुपल और दंडवत्रा। जब जय विजय ने देखा और उसके पश्चात भगवान के धाम लौट गए थे। और जब गुरु जय विजय ने देखा चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं कि भगवान प्रकट हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो जय विजय की इच्छा थी कि हम भी प्रकट हो महाप्रभु की लीला को और मधुर बनाने के। जैसे जब भगवान ने जब कुमारा ने देखा था कि जय विजय तो इतने प्रिय हैं भगवान के भक्त, हमने तो गलती कर दी उन्हें श्राप देकर, तो वो श्राप वापस ले रहे थे। तो भगवान ने कहा नहीं, मेरी इच्छा की तुमने उन्हें श्राप दिया कि भगवान प्रकट हो रहे थे, वो चाह रहे थे अपनी लीला को प्रकट करने के लिए। उसी प्रकार जय विजय ने देखा कि भगवान प्रकट हुए महाप्रभु के रूप में, तो उनकी इच्छा थी वो भी प्रकट हो, वो प्रकट हो गए दिखाई बताए के रूप में। तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार उन्होंने प्रचार किया। उन्हें पता लगा कि ये दो बड़े पतित हैं, पापी हैं, क्रोधित हैं, किसी को भी कत्ल कर देते हैं। महाप्रभु के आदेश के अनुसार उन्होंने प्रचार किया। देखा है मलाई ने जैसे सुना ये प्रचार, बहुत भी गुस्से हो गए। कईयों ने उन्हें कहा था इनके पास ही मत जाना, निकल भी जाओगे तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा। तो वो यही सोच रहे थे अगर हम ये शहर के सबसे पतित व्यक्तियों को उद्धार कर लें तो महाप्रभु की महिमा और भी बढ़ जाएगी। तो जगह मनाए चिल्ला कर पीछा किया, नित्यानंद को भागना पड़ा। जब वो उन्होंने प्रचार किया और जगह मनाए मारने के लिए आए, उन्हें भागना पड़ा। उनके पीछे जगह मनाए भी भाग रहे थे, जगह मनाए पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो मोटे थे। ज्यादा जल्दी से दौड़ कर हमारी जान बच गई। नित्यानंद ने कहा तुमने तो उनका भी उद्धार किया जिन्होंने तुम्हें 22 बाजार में पीटा था, इनका भी उद्धार करना है। जब महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु ने पूछा तो आज के प्रचार का क्या परिणाम है। प्रभा जी भी पूछते थे क्या फोटो प्रचार के। तो नित्यानंद हरिदास ने कहा क्या बीता। महाप्रभु ने कहा फिर से जाओ प्रचार करने के लिए इन दो भाइयों के पास। तो अगले दिन वो फिर से आए प्रचार करने। मदाई ने देखा क्रोध होकर कहा फिर से तुम आ गए हो, कल बोला था हमारे पास भी माता ना। पत्थर फेंका, पत्थर इतनी तेजी के साथ फेंका कि 30 आदमियों को मार देगा वो पत्थर, इतनी ताकत के साथ फेंका। जिसके कारण नित्यानंद के माथे से खून बहने लगा जो उनके पूरे वस्त्र में फैल गया। और तो वो दूसरा पत्थर देखने वाले थे तो जगह ने रोक दिया। क्षेत्रीय महाप्रभु को सूचना मिली कि नित्यानंद को मदाई ने पत्थर फेंककर फेंका है मदाई ने नंद के माथे पर। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो पूरे गुस्से में अपने सुदर्शन चक्र को लेकर आए। पहले तो महाप्रभु का सिद्धांत था नादपि सुनि चेन तगोरपि साइन मानी न माना न कहते मेरे विनम्रता का सहनशील मन। यहाँ आप देखते हो महाप्रभु को जब सूचना मिली कि नित्यानंद पर ये अपराध हुआ है तो हमने सुदर्शन चक्र लेकर तेजी के साथ आए भागे भागे। तो इससे हमें क्या सूचना मिलती है, ये मिलती है कि वैसे हमें विनम्र होना चाहिए, आदर देना चाहिए बिना किसी आदर की उम्मीद। जब हम देखें कि परम भगवान उनके भक्तों पर अपमान हुआ है तो उस स्थिति में आप क्रोधित हो सकते हो। जगाई ने रोक दिया था मलाई को दूसरे पत्थर को फेंकने से। ये भगवान अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करने लगे थे तो नित्यानंद भगवान ने रोक दिया। नित्यानंद ने कहा ये एक छोटा उदाहरण है, इस कलयुग में अनेक जगहें मलाई होंगी। ऐसे प्रभा जी भी जब प्रचार करने गए, भगवान नित्यानंद ने प्रचार किया महाप्रभु के आदेश के अनुसार, प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, उनके गुरु महाराज के आदेश के अनुसार नित्यानंद ने जब प्रचार आरंभ किया, कईयों ने सहयोग दिया, कईयों ने अपराध किया। जब प्रभुपाद ने प्रचार शुरू किया, कईयों ने सहयोग दिया, कईयों ने विरोध किया। जैसे आज भी विदेश में कई सरकारें विरोध कर रही हैं इसका क्यों विचार। तो और प्रभुपाद ने प्रचार किया तो जगह मदाई पर प्रचार किया। जैसे महाप्रभु जब झारखंड जंगल से गुजर कर जा रहे थे, उन्होंने पशु दो को भी परिणाम करवाया। इसी प्रकार जब प्रभुपाद भी प्रचार कर रहे थे, उन्होंने जिनकी पशु भगवान को दी थी उन्हें भी जोड़ा। तो नित्यानंद की विनम्रता जब देखी जगाई मदाई ने, खास के मदाई कहने में बड़ा पछतावा हुआ। और चैतन्य महाप्रभु ने जगाई को आशीर्वाद दी। जगाई के व्यवहार से बड़े प्रसन्न थे कि जगाई ने बचाया मदाई को दूसरे पत्थर की मार खाने से। मदाई ने सोचा कि मैंने बड़ा अपराध किया है, वो समझ गए मैंने अपराध किया है। उन्होंने नित्यानंद से माफी मांगी, पूछा इस अपराध का मैं कैसे बचूं इस अपराध से। तो भगवान नित्यानंद ने कहा एक घाट बनाओ यात्रियों के लिए। उन्होंने गंगा के तट पर एक घाट बनाई और जो भी यात्री आए वहां उसके चरण को धो, उसकी सेवा करो। ये जगह मदाई घाट आज भी है, जहाँ के मदाई ने रोज जो भी यात्री आता था उसके चरण धोते थे, उनका सहयोग देते थे, घाट को साफ रखते थे। और नित्यानंद की कृपा से जगह मदाई ने जाप शुरू किया। रोज दिन में 200,000 बार पूरा हरि नाम का उच्चारण करते रहे। नित्यानंद की कृपा से जगह मदाई का उद्धार हुआ। और नित्यानंद जी की कृपा जो आप प्राप्त कर रहे हो प्रभुपाद जी के माध्यम से, लाखों लोगों का उद्धार हो रहा है। भगवान नित्यानंद अत्यंत दयालु है, इसे नर्मदा दास ठाकुर कहते हैं कि नर्मदा दास ठाकुर कहते हैं कि आप दया करोगे वही मुझे चैतन्य महाप्रभु की दया प्राप्त होगी। और नर्मदा दास ठाकुर कहते हैं नित्याय पद कमला, पिताए की शरण लोगे तो लाखों चंद्रमा की रोशनी का प्रभाव अनुभव करोगे। गर्मी के मौसम में दोपहर को बहुत गर्मी होती है, फिर गर्मी का मौसम आने वाला है। पर शाम को जब संभव है, शाम के समय जब चंद्रमा किरण प्रकट होती है ठंड महसूस होती है। तो नर्मदा दास ठाकुर कहते हैं पिताए पद कमला, पिताए के शरण लेना लाखों चंद्रमा की किरण के बराबर है। दूसरे शब्द में भगवान नित्यानंद की शरण लोगे तो शांति शांति आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा और उसके द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। चैतन्य भगवत में आप पढ़ते हो नवदेव शहर में ब्राह्मण भक्त भी थे और चोर भी थे। तो एक ब्राह्मण था तो चोरों का नेता था, पैदाइशी ब्राह्मण पर आचरण में चोर था। निमाई जो था अवधूत सन्यासी भी थे बहुत महंगे वस्त्र पहनते थे, उंगलियों में सोने की, हर उंगली में सोने की मुद्री और हार वगैरह के सोने। चोरों ने योजना बनाई कि अगर हम ये चुरा लें इसके गहने तो हम सब धनी बन जाएंगे, हम चोरी का धंधा छोड़ देंगे, अच्छी आमदनी हो जाएगी, फिर हम रिटायर कर लेंगे। तो माई उस समय हड़ाई पंडित नहीं, हड़ाई पंडित एक ब्राह्मण के घर में ही निवास कर रहे थे। तो पहले तो ये चूहों का नेता था, के साथ घूम रहा था, उनके ये समझने के लिए चोरी कब की जाए। तो फिर उन्होंने देखा, उन्होंने जासूस भेजे, देखो अभी क्या कर रहे हैं नित्यानंदा, हम रात को जब वो सो जाएगा, जब डर जाएंगे चोरी करने के लिए। तो उन्हें सूचना मिली नित्यानंदा इस समय भोजन खा रहे हैं और भोजन के बाद वो अक्सर सो जाते हैं। तो इस चोरों के नेता ने अपने साथियों को कहा, अभी दोस्तों थोड़ा तो विश्राम करते हैं, जब यह अवधूत सन्यासी सो जाएगा तब घर की बत्ती बंद हो जाएगी, जब हम जाएंगे डाका मारने के लिए। तो नित्यानंदा की लीला से चोरों ने कहा ठीक है, तो एक दो घंटे बाद हम हमला करेंगे। पर चोरों को गहरी नींद आ गई, सब सो गए। सुबह जब उठे तो एक दूसरे से लड़ने लगे, तुम पहले सो गए थे, हमने काली की पूजा ठीक नहीं की थी, जनता के प्रभाव में आ गए, काली की पूजा ठीक करेंगे, एक बार हमला करेंगे। तो उन्होंने मांस और शराब काली को चढ़ाया। थोड़े दिन बाद फिर योजना बनाई, आज रात को हमें जरूर इस अवध सन्यासी के गहने को चोरी करना है। तो उन्होंने फिर से योजना बनाई और उन्होंने अपने जासूस को भेजा, देखो नित्यानंदा क्या कर रहा है। समय वहां से उन्हें सूचना मिली, नित्यानंदा के घर के सामने उन्हें बड़े बड़े चौकीदार देखे और वो बड़े बड़े हथियार के साथ खड़े थे। ऐसे लग रहा था कि नित्यानंदा को मिलने को बड़ा व्यक्ति आया है, उनकी सुरक्षा हो रही है। तो फिर चोरों के नेता ने कहा, आज भी योजना सफल नहीं होगी, चौकीदार खड़े हैं, उनमें से एक चौकीदार हम सबको काट देगा। ये चोर थे, उन्होंने कहा कि आज भी योजना सफल नहीं, उन्होंने कहा ठीक कल कल करेंगे। तीसरी बार फेरा है इसी विचार के साथ, जैसे जितना ही सोएगा हम उनके सारे गहने चुरा रहे हैं। पर तीसरे दिन जब आए इतनी तेजी से तूफान आया, बारिश पड़ने लगी और सारे डाकू चोर अंधे हो गए, सुख खड़े बिगड़ गए। चोरों के लिए जरूर ये जो नित्य नित्यानंद है असली आवाज हो जाए। हमारी जो योजना अभी सफल नहीं होगी। पहली रात हमने जब चोरी करने का भाव था इरादा, हम सबको नींद आ गई। दूसरी बार जब हम चोरी करने गए तो वहां सिपाही हमें देखे। तीसरी बार हम जब चोरी करने गए तो सब अंधे हो गए। जैसे ये पछतावा आया उनके हृदय में कि नित्यानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो सब वैसे उनकी आंखें वापस आ गई। तो जो गुरु के गुरु थे चोर के, वो गए नित्यानंद जी पर, उनकी शरण ली और कहा, उन्हें पूरी जो इतिहास था बता दिया। नित्यानंद ने कहा, भविष्य में ऐसा कार्य मत करना। और नित्यानंद जी के पास सारे चोर क्या बन गए, भाई बन गए। तो नित्यानंद जी के पास सारे चोर भाग बन गए। नित्यानंद जी की अनेक लीलाएं हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे धनी खानदान के बेटे थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी एक ही बेटे थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी मिले थे नित्यानंद से। उस समय भगवान नित्यानंद राघव पंडित घर में निवास कर रहे थे, और मैंने तो जब किसी रघुनाथ दास ने भगवान नित्यानंद को दूर से प्रणाम किया, और नित्यानंद जी के भक्त ने कहा, रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। तो माँ नित्यानंद ने कहा, मेरे छुप रहा है वो, लाओ इसे। उसके सिर पर पाँव रखा नित्यानंद ने। फिर नित्यानंद ने रघुनाथ से कहा, तुम धनी हो, अपने धन का उपयोग करो। एक पानी हानि उत्सव किया जिसमें रघुनाथ ने अपने धन से स्वीट लाई छुड़ा सबको खिलाया। ये पानी हानि उत्सव हर साल होता है, इसको उनके मंदिर में भी होता है। फिर भगवान नित्यानंद की अनेक लीलाएं हैं। और ये शुभ दिन पर हमें क्या करना चाहिए? शुभ दिन पर हमें भगवान नित्यानंद की से प्रार्थना करनी चाहिए क्या, कि हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो। आध्यात्मिक शक्ति क्यों चाहिए आपको? माया का विरोध करने के लिए। नित्यानंद जी की कृपा होगी, जैसे नंदनदास कहते हैं, भगवान नित्यानंद की शरण लोगे तो चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त होगी। महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी तो राधा कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होगी। तो ये सब आरम्भ होता है नित्यानंद जी हैं गुरु की प्रतिनिधि। तो हमें भगवान नित्यानंद की शरण लेनी चाहिए, और आज उनके शुभ दिन पर उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ये कृपा प्राप्त हो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ सके। नित्यानंद जी का सदा एक ही भाव था, जैसे बलराम जी का एक ही भाव था सदा कृष्ण की सेवा, लक्ष्मण का एक ही भाव था राम की सेवा, नित्यानंद जी का एक ही भाव था सदा कृष्ण की सेवा। हर कार्य का कृष्ण की सेवा में इस प्रकार हमें भगवान नित्यानंद से प्रार्थना करनी चाहिए। और नित्यानंद जी ने खुले रूप से हरि नाम का प्रचार किया। और ठाकुर भक्ति रोजी रोचनदास ठाकुर रोचनदास ठाकुर अभी सब रचनाओं में एक ही विषय को स्थापित कर रहे हैं, वो विषय है भगवान ने नंद की शरण लो, शरण लोगे तो शक्ति प्राप्त होगी जिसके सहयोग से माया का विरोध कर सकते। हम सबको भगवान नंद जी की कृपा की आवश्यकता है। आपके इस दिल्ली मंदिर में ऐसे तो भगवान गोणिता की मूर्तियाँ हर जगह है, आपकी गोणिता की मूर्तियाँ खास खूबसूरत है। भगवान नित्यानंद से यही प्रार्थना करो कि उनकी कृपा प्राप्त हो, इसके सहयोग से आप माया का विरोध कर सको, ये इच्छा है सबकी। नित्यानंद जी की शरण लोगे तो आपको आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा, आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा तो माया का विरोध सारा सरलता से कर सकोगे। तो आज के दिन बड़ा शुभ दिन है, हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान नित्यानंद की जय।